पृष्ठ संख्या 6। जब तक मोहम्मद गौरी ने अपना राज्य स्थापित नहीं कर लिया, उस समय तक वहाँ गजनवी वंश राज्य करता रहा। मोहम्मद गौरी के समय में राज्य की सीमा पंजाब से बढ़कर मध्य भारत तक पहुँच गई और उसकी मृत्यु के पश्चात 1206 ईस्वी में गुलाम वंश ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। इस समय मध्य एशिया में चंगेज खान ने ऐसी हलचल मचा रखी थी कि बहुत से ईरानी हिंदुस्तान में भाग आए। फिर खिलजियों का राज्य स्थापित हुआ, जिसकी सीमा थोड़े ही समय में पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैल गई। मलिक काफूर के विजयी आक्रमणों ने उत्तरी और दक्षिणी भारत को एक कर दिया और बाह्य रूप से सारा देश एक केंद्र के अधीन संगठित हो गया। तुगलकों के समय में एक याद रखने योग्य घटना यह हुई कि मोहम्मद तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दक्षिण भारत में देवगिरी कर दी और सारे दिल्ली वासियों को आदेश दिया कि एक एक व्यक्ति वहां जाए, किंतु जब यह आदेश उचित मालूम ना हुआ तो साल भर के बाद ही दिल्ली वापस लौटने का हुक्म हो गया। बहुत से लोग लौट ना सके और वहीं रह गए। अभी आगे चलकर जब हम उर्दू के उद्भव और उसके प्रारंभिक विकास का विश्लेषण करेंगे तो इस घटना के महत्व का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिल्ली को केंद्र बनाकर कई वंशों के बादशाहों ने भारत पर राज्य किया। सैनिक और अधिकारी इधर उधर आते जाते रहे, यहाँ तक कि 16वीं शताब्दी में मुगल आए। एक दफा फिर सबल शासन प्रबंध स्थापित हुआ और दूर दूर के प्रदेश जो पिछले राज्यों को निर्बल पाकर स्वाधीन हो गए थे, फिर मुगल राज्य के अधीन हो गए। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असाधारण उन्नति हुई। 200 वर्ष के लगभग राज करने के बाद जब मुगलों का पतन होने लगा तो मराठों, सिखों और सबसे बढ़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्थान हुआ। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उर्दू भाषा और साहित्य का जन्म भली भांति हमारी समझ में आ सकेगा। पंजाब में गजनवी बादशाहों के 125 वर्ष के शासन काल में अच्छा खासा सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। महमूद गजनवी में चाहे जो त्रुटियां रही हों, परंतु वह बड़ा विद्या प्रेमी था और संस्कृत भाषा का महत्व स्वीकार करता था। भारत में अपना संबंध प्रकट करने के लिए उसने अपनी मुद्रा पर संस्कृत भाषा के शब्दों को भी जगह दी थी। बेरुनी, जो उस समय का सबसे प्रसिद्ध विद्वान था और जिसे भारत के धर्म, गणित और सामाजिक समस्याओं से बड़ा प्रेम था, इस मेलजोल की सबसे बड़ी यादगार है। उसने भी लिखा है कि उस समय संस्कृत की बहुत सी पुस्तकों के अनुवाद अरबी और फारसी में हुए। इस युग के बड़े बड़े फारसी कवियों की रचनाओं में भी एक आध शब्द हिंदुस्तान की भाषाओं के मिलते हैं। इतिहासकारों ने ख्वाजा मसूद साद सलमान, मृत्यु लगभग 1130 ईस्वी को, हिंदी का पहला कवि माना है। पृष्ठ संख्या 7। मसूद लाहौर का रहने वाला था, अरबी फारसी का अधिकारी विद्वान था। 1066 ईस्वी के लगभग लिखी गई उसकी कविताएं अप्राप्य हैं। इसी प्रकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मृत्यु 1225 ईस्वी, तथा उनके उत्तराधिकारी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मृत्यु 1235 ईस्वी, विषय में भी प्रचलित है, परंतु उनकी भी कोई हिंदी रचना प्राप्य नहीं है। उसने भारतीय भाषा में भी योग्यता प्राप्त कर ली थी और एक संग्रह भी तैयार कर लिया था। उसकी भाषा को हिंदी की संज्ञा दी जाती है, परंतु यह कहना कठिन है कि उस भाषा का स्वरूप क्या था। उस समय फारसी शब्दावली में किसी भी भारतीय भाषा को हिंदी कहते और लिखते थे। उसके हिंदी संग्रह की चर्चा अमीर खुसरो और मोहम्मद औफी ने की है, परंतु अब वह उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों का मेलजोल व्यर्थ नहीं जा रहा था, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिव्य रूप से प्रकट हो रहा था। यहाँ तक कि राजपूत राजसभाओं के कवि नरपति नाल और चंदवरदाई ने भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग किया। फिर जब दिल्ली मुसलमानों की राजधानी बनी तो मेलजोल की यह आवश्यकता और बढ़ गई और भाषिक घनिष्ठता का केंद्र पंजाब से दिल्ली आ गया और वहाँ की भाषाओं में सम्मिश्रण आरंभ होने लगा। इस अवसर पर भाषा से दिलचस्पी लेने वालों को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि जब देश या राष्ट्र किसी दूसरे देश या राष्ट्र पर विजय पाता है, तो विजय पाने वाला अपनी भाषा को पराजित राष्ट्र के लोगों पर नहीं लादता, बल्कि अपनी भाषा के कुछ जरूरी और काम देने वाले शब्द उस देश की भाषा में मिलाकर स्वयं स्थानीय भाषा बोलने और उसी को अपनाने लगता है। जो मुसलमान यहाँ आए, वह तुर्की, अरबी भाषाएं और दूसरी मध्य एशियाई भाषाएं बोलते थे, किंतु उनके साहित्यिक और सांस्कृतिक व्यवहार का माध्यम फारसी थी। जब ये लोग यहाँ आए, तो उनको अधिकतर आर्य भाषाओं से ही काम पड़ा, जिनका रूप बदला हुआ था, परंतु मूल एक ही था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचार अलग थे, परंतु राज सिंहासन पर बैठकर हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाह मुसलमान बनने से अधिक बादशाह बनने की भावना रखते थे, और अपने राज्य की स्थापना और सुदृढ़ता के लिए केवल हिंदुओं से ही नहीं मुसलमानों से भी लड़ते थे। जिसने भारतवर्ष का इतिहास पढ़ा है, वह इसे भली भांति जानता है कि गजनबियों के समय से लेकर मुगलों के अंतिम दिनों तक यही होता रहा। मुसलमान बादशाह दुनिया के दूसरे बादशाहों की तरह आन बान से राज करने को अपना परम कर्तव्य समझते थे। धर्म फैलाना उनका लक्ष्य नहीं था। वे जिस साम्राज्यवादी श्रेणी और राजसी परंपरा से संबंध रखते थे, उसमें किसी रुकावट के बिना राज्य करना उनका ध्येय था। धार्मिक बाधाओं को तोड़ने में उन्हें बस उतना ही समय लगता था जितना सामाजिक या दूसरी बाधाओं को तोड़ने में। यह मुसलमान बादशाह यहीं के हो गए थे। पृष्ठ संख्या 8। यहीं की मिट्टी में जन्म लेकर और यहीं की धरती में सोकर यहाँ के लोगों में घुल मिल जाना चाहते थे। उन्होंने यहाँ की बहुत सी रस्मों और रीतों को अपना लिया था और भारतीय जीवन में आनंद प्राप्त करने लगे थे। उन्होंने जो कुछ यहाँ से लिया और यहाँ के संस्कृति को जो कुछ दिया, उसके विवरण का अवसर नहीं है। जब लड़ाइयों, चढ़ाइयों, आक्रमणों और संग्रामों से उत्पन्न होने वाली घृणा की लहर बैठी, तो हिंदुओं और मुसलमानों के हृदय में मेल मोहब्बत के सोते फूट पड़े, जिन्होंने कला और धर्म सबको लपेट में ले लिया और उनकी भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं को एक दूसरे के समीप कर दिया। भक्ति को एक लोकप्रिय और उस समय की समस्याओं को देखते हुए प्रगतिशील आंदोलन बनाने में हिंदू और मुसलमान दोनों भक्तों का हाथ है। जब आचार विचार की सीमाएं इस प्रकार निकट आ गई हों, तब एक ऐसी भाषा के जन्म लेने की संभावना दूर नहीं रह जाती जो मिले जुले सामाजिक जीवन का चिन्ह हो। ऐसे सामाजिक जीवन के विकास के लिए उसका निखर कर ऊपर आ जाना आवश्यक हो जाता है। इस बात पर लगभग सभी भाषा शास्त्री एक मत हैं कि वर्तमान आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी के निकट भाषा का रूप ग्रहण करने लगी और उनके बोलने में, विशेषकर मध्य भारत और पंजाब की भाषाओं के बनने में, फारसी भाषा और मेलजोल ने बड़ी सहायता की। अभी हम ऊपर देख आए हैं कि प्राकृत के दूसरे युग के अंत में अपभ्रंश का आरंभ हो गया और सौर सेनी प्राकृत के क्षेत्र में सौर सेनी अपभ्रंश बोली जाने लगी थी। उसका क्षेत्र पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में सीमित किया जा सकता है। मुसलमान पहले पहल पंजाब ही में बसे, इसीलिए वहीं की भाषा काम में लाते होंगे और वहीं फारसी, अरबी और भारतवर्ष की बोलियों में पहले पहल मेलजोल हुआ होगा। अगर आज ख्वाजा मसऊद साद सुलेमान की हिंदी रचनाएं मौजूद होती, तो हम उस समय के मेलजोल का कुछ अनुमान कर सकते। परंतु लगभग 250 वर्ष बीतने के बाद दिल्ली में अमीर खुसरो ने जन्म लिया और अन्य सूफी महापुरुषों ने भारतीय बोलियों में भक्ति और प्रेम का संदेश सुनाया, जिसके कुछ भाग प्राचीन पुस्तकों में अब भी मिल जाते हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से उर्दू भाषा की जन्म की कहानी लिखना चाहें, तो हमें शौरसेनी अपभ्रंश के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली आधुनिक आर्य भाषाओं का गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। उर्दू की जन्मभूमि पंजाब और दिल्ली है। दिल्ली उत्तरी भारत के मध्य में एक ऐसे स्थान पर है जहाँ शौरसेनी प्राकृत के गर्भ से पैदा होने वाली कई भाषाएं आकर मिलती हैं। यह भाषाएं अलग अलग होते हुए भी अपने मूल में एक थीं। दिल्ली के एक ओर हरियाणवी थी, दूसरी ओर खड़ी बोली। पश्चिम में पंजाबी का क्षेत्र आरंभ हो जाता है, दक्षिण पूर्व में ब्रज भाषा का। दो 300 साल तक तो इन भाषाओं में कहने योग्य कोई साहित्य पैदा नहीं हुआ, परंतु इनकी नींव दृढ़ होती रही। फिर कृष्ण भक्ति के जोर से ब्रजभाषा में कवियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। पृष्ठ संख्या 9। राजस्थानी और उसकी बोलियों में थोड़ा बहुत साहित्य रचा जाने लगा, परंतु खड़ी बोली केवल बोलचाल की ही भाषा बनी रही। इसका सबसे बड़ा कारण यह लगता है कि ऊपरी श्रेणी के जो लोग लिखने पढ़ने में दिलचस्पी रखते थे, अपना काम फारसी से चलाते थे, और केंद्र में ऐसा होना संभव भी था। क्लासिकल भाषाएं अपने गहरे प्रभाव से प्राकृतों और बोलियों की उन्नति में सदैव बाधक होती हैं। यही हाल फारसी के होते हुए दिल्ली के आसपास की बोलियों का था। फिर भी खड़ी बोली में, जो दिल्ली के बाजारों की भाषा थी, अरबी फारसी के शब्द प्रवेश करते रहे, जिनका प्रयोग राजनीतिक एकता के लिए आवश्यक था। इस खड़ी बोली में जो परिवर्तन हुआ, उससे वह भाषा बनी जिसको साधारणतः हिंदुस्तानी कहा जाता है। इस हिंदुस्तानी के दो साहित्यिक रूप हैं, एक उर्दू जिसमें अरबी फारसी के शब्द अधिक होते हैं और जिसे फारसी लिपि में लिखा जाता है, दो हिंदी जिसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है और जिसे देवनागरी में लिखते हैं। यह भी न भूलना चाहिए कि खड़ी बोली का यह रूप पहले उर्दू की ही शक्ल में निखरा, और जिसने भी हिंदुस्तानी को साहित्य के काम में लाना चाहा, उसने उर्दू ही को अपनाया। इस प्रकार यह बात सिद्ध हो जाती है कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकास पाने वाली अन्य भाषाओं में एक उर्दू भी है। यही कारण है कि उर्दू पंजाबी और हरियाणी के व्याकरणों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। आगे चलकर हम देखेंगे कि कई विद्वानों ने भाषा शास्त्र के इस सिद्धांत को समझने में कितनी गलती की है। 1000 ईस्वी के बाद से भारतवर्ष में कई नई भाषाएं दिखाई देने लगती हैं। इस बात का अनुमान लगाना कुछ कठिन नहीं है। 200 वर्ष बीत जाने के बाद जो मुसलमान भारतवर्ष में पैदा हुए होंगे और यहाँ के लोगों में घुल मिल गए होंगे, उनकी मातृभाषा फारसी नहीं हो सकती, परंतु धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से फारसी अरबी शब्दों का प्रयोग अनिवार्य रहा होगा, और अनुमानतः वह जिस भाषा के क्षेत्र में रहते होंगे, उसी क्षेत्र की भाषा का प्रयोग करते होंगे। सच यह है कि भाषा का कोई धर्म नहीं होता, सामाजिक आवश्यकताएं उसको प्रचलित करती हैं। यदि हम भारतवर्ष की विभिन्न भाषाओं का इतिहास पढ़ें, तो हमें ज्ञात होता है कि भाषा से काम लेने के संबंध में हिंदू मुसलमान का भेद नहीं था। मुसलमानों ने ब्रजभाषा और अवधी में उसी प्रकार रचनाएं की हैं जिस प्रकार हिंदुओं ने। भारतीय साहित्य के इतिहास में कुतबन, रसखान, जायसी और रहीम के नाम उसी आदर के साथ लिए जाते हैं जैसे तुलसीदास, सूर और मीरा के। इसीलिए उर्दू साहित्य के इतिहास को इसी दृष्टि से पढ़ना चाहिए, नहीं तो उसका सांस्कृतिक महत्व सामने नहीं आ सकेगा। उर्दू की उत्पत्ति के विषय में हिंदी और उर्दू के कई लेखकों ने बहुत गलत विचार प्रकट किए हैं। भाषा विज्ञान के अनभिज्ञ कुछ लोग इसे फारसी भाषा पर आधारित समझते हैं। यह भ्रम इसलिए है कि उर्दू में फारसी शब्दों का प्रयोग बहुत, पृष्ठ संख्या 10, किया गया है, परंतु कुछ तो इस कारण से है कि उसके निर्माता फारसी अरबी जानते थे, और दूसरे इसलिए कि फारसी स्वयं एक आर्य भाषा है और संस्कृत की वंशज होने की वजह से बदले हुए रूप में ऐसे बहुत से शब्दों को अपने अंदर जगह देती है जो फारसी में भी मिलते हैं। परंतु यह बात स्पष्ट है कि व्याकरण की दृष्टि से उर्दू का फारसी में बहुत कम संबंध है। कुछ लेखक उर्दू का विकास सिंधी में ढूंढते हैं, जैसे मौलाना सुलेमान नदवी। कुछ द्रविड़ भाषा से इसका रिश्ता मिलाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान के सुहेल बुखारी। कुछ यह कहते हैं कि इसके व्याकरण की रूपरेखा पाली में मिलेगी, जैसे पाकिस्तान के शौकत सबजवारी। किंतु जिसे भी भाषा विज्ञान और भारत में भाषिक विकास के इतिहास का थोड़ा भी ज्ञान है, वह इनमें से किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता। इन समस्त विचारधाराओं का विश्लेषण यहाँ संभव नहीं हो सकता, परंतु इतना कहना आवश्यक है कि उर्दू ना तो विदेशी भाषा है, ना वह सिंध में पैदा हुई, और ना दक्षिण भारत में, ना पंजाबी से निकली, ना ब्रजभाषा से। वरन जैसा कि ऊपर कहा गया है, दिल्ली के चारों ओर बोली जाने वाली कई बोलियों में फारसी अरबी के शब्दों के मिलने और पश्चिमी हिंदी की उस बोली में जिसे खड़ी बोली कहा जाता है, रूप ग्रहण करने से एक नई भाषा का विकास हुआ। आरंभ में उस पर पंजाबी का प्रभाव अधिक रहा, परंतु धीरे धीरे खड़ी बोली ही उर्दू के रूप में निखरती गई। इतनी ही बात ठीक है कि उर्दू एक आर्य भाषा है जो खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश शौरसेनी प्राकृत के अंदर होकर बोलचाल की उस भाषा से संबंध जोड़ती है जो संस्कृत के साथ साथ बोली जाने वाली प्राकृतिक बोलियों के रूप में अब से 2500 वर्ष पूर्व जीवित और प्रचलित थी। ऐतिहासिक कारणों से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसने फारसी अरबी और संस्कृत की शब्दावली से भी काम लिया। इसका मूल आधार खड़ी बोली है, किंतु एक जीवित भाषा होने के कारण उसमें उन सभी भाषाओं के शब्द आ गए हैं जिनसे उसका संपर्क रहा है। इससे पहले कि उर्दू साहित्य के प्रारंभिक चिन्हों की खोज की जाए, यह भी देख लेना चाहिए कि प्राचीन इतिहासों में उर्दू के क्या-क्या नाम मिलते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव उसके साहित्य के इतिहास पर पड़ता है। आरंभ में जिन लोगों ने फारसी में भारतवर्ष के इतिहास लिखे या हिंदुस्तान में सैर करने के लिए आए और अपनी यात्रा का हाल लिखा, उन्होंने यहाँ की भाषाओं को साधारणतः जवाने हिंदी, हिंदी या हिंदुई लिखा है। पृष्ठ संख्या 11। इन लोगों की पहुँच अधिकतर पंजाब, गुजरात और उत्तरी भारत तक थी, इसलिए यह बात स्पष्ट है कि उन्होंने यहाँ की भाषाओं के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया होगा। अमीर खुसरो ने भी जहाँ भारत की भाषाओं का वर्णन किया है, वहाँ हिंदी और हिंदुई के अतिरिक्त जवाने देहली भी लिखा है। मुहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक के राज्यकाल में जो इतिहास की पुस्तकें लिखी गई, उनमें भी उत्तरी भारत की बोलचाल की भाषा के लिए हिंदुई लिखा गया है। 14वीं व 15वीं शताब्दियों में दक्षिण में उसको जवाने हिंदुस्तान, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी कहा जा रहा था, कभी कभी उसी को दक्षिणी भी कहते थे। 16वीं सदी में अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध रचना आईने अकबरी में हर प्रांत की भाषा का अलग अलग वर्णन किया है और उसमें भी हिंदुई शब्द का प्रयोग किया है। गुजरात में इसे हिंदी या हिंदुई और गुजरी तीनों नामों से संबोधित किया गया है। लगभग 19वीं सदी के अंत तक उर्दू शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में नहीं मिलता, उसकी जगह रेखता या हिंदी दो ही शब्द कवियों की जवान पर चढ़े हुए थे। रेखता संगीत का एक पारिभाषिक शब्द था, इसमें राग रागिनियाँ मिलाई जाती थी। अधिकतर वह शब्द पद्य के लिए काम में लाया जाता था, गद्य के लिए हिंदी ही बोलते और लिखते थे। इस प्रकार उर्दू के कई नाम मिलते हैं जिनमें से कुछ तो किसी विशेष प्रांत या क्षेत्र में बोले जाते थे और कुछ किसी विशेष समय में। मुगलों की उन्नति के समय में महल और सेना से संबंधित बाजार होते थे, वहाँ मिलीजुली बोलियाँ बोली जाती थी। उसके लिए कभी कभी जवाने उर्दू या जवाने उर्दू ए मुअल्ला का प्रयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के आरंभ से कुछ पहले साधारणतः उर्दू का शब्द भाषा के अर्थ में बोला जाने लगा। उसी समय से यूरोपियन लेखकों ने इसे हिंदुस्तानी कहना भी आरंभ किया। इस पुस्तक में भ्रम से बचने के लिए उर्दू शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इस बात की ओर संकेत किया जा चुका है कि 11वीं सदी ईस्वी में ख्वाजा मसऊद ने हिंदी में कविताएं लिखी थी, परंतु उनका पता नहीं चलता। आगे बढ़ते हैं तो 12वीं 13वीं शताब्दियों में कई सूफी फकीर देश के कोने कोने में फिरते दिखाई देते हैं। यह बात बिना किसी संकोच के मानी जा सकती है कि ये लोग साधारण लोगों के सामने फारसी और अरबी ना बोलते होंगे, बल्कि किसी ऐसी भाषा से काम लेते होंगे जो उनकी समझ में आ सके। हम यह भी समझते हैं कि उस समय कोई ऐसी बनी बनाई भाषा प्रचलित नहीं रही होगी जिसमें वह धर्म और भक्ति के गहरे विचार सरलता से प्रकट कर सकें। इसलिए उनको मजबूरन बहुत से फारसी अरबी के शब्द बोलचाल की भाषा में मिलाने पड़ते होंगे। इस तरह के बहुत से वाक्य और कई कविताएं मिलती हैं जिनमें हम उर्दू की खोज लगा सकते हैं जो बन रही थी। इस संबंध में पहले पहल नाम बाबा फरीद शंकरगंज 1173 ईस्वी से 1265 ईस्वी का मिलता है। बाबा फरीद के पिता कमालुद्दीन को महमूद गजनवी का भांजा, पृष्ठ संख्या 12, कहा जाता है, जो शहाबुद्दीन के आक्रमण काल में काबुल से भारत आए और पंजाब में बस गए। भाषा विज्ञान के जानकारों ने कई दोहों को उनका नहीं माना है, परंतु प्राचीन पुस्तकों में उनके बहुत से कथन और शेर मिलते हैं। विशेष रूप में सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ साहब में उनके 130 दोहे सम्मिलित हैं, जिसे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के आदेश पर गुरुदास ने संवत 1661 में संपादित किया था। इन दोहों को धार्मिक मान्यता प्राप्त है। इसी प्रकार शेख हमीदुद्दीन नागौरी, मृत्यु 1274 ईस्वी, शेख सरफुद्दीन बुअली कलंदर, मृत्यु 1323 ईस्वी, अमीर खुसरो, मृत्यु 1324 ईस्वी, शेख सिराजुद्दीन, मृत्यु 1356 ईस्वी, सैफ सरफुरुद्दीन मनेरी, मृत्यु 1370, मखदूम अशरफ जहांगीर, मृत्यु 1355 ईस्वी, शेख अब्दुल हक रुदौलवी, मृत्यु 1433 ईस्वी, हजरत गेसु दराज, मृत्यु 1421 ईस्वी, सैयद मोहम्मद जौनपुरी, मृत्यु 1504 ईस्वी, शेख बहाउद्दीन बाजन, मृत्यु 1506 ईस्वी, शाह हाशिम अलवी, मृत्यु 1649 ईस्वी इत्यादि के बोल और दोहे इस बात का पता देते हैं कि 13वीं शताब्दी से फारसी अरबी शब्दों के मेल से एक ऐसी भाषा बन रही थी जो जनसाधारण की समझ में आ सकती थी और जिसको सूफी फकीर प्रचार के काम में लाते थे। इन नामों में अमीर खुसरो और गेसु दराज उर्दू साहित्य के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। गेसु दराज का उल्लेख दूसरे अध्याय में किसी प्रकार विस्तार से होगा। अमीर खुसरो फारसी के महान लेखक थे और उनकी बहुत सी रचनाएं मिलती हैं जो ईरान और भारत दोनों में समान रूप से आदरणीय समझी जाती हैं। उनकी पुस्तकों में भारत की बोलियों, त्योहारों, ऋतुओं, फूलों, फलों की चर्चा की गई है। यहाँ की जलवायु, सुंदरता और जीवन के विभिन्न रूपों को सराहा गया है। यहाँ की संगीत कला में वह केवल निपुण ही नहीं थे, बल्कि अपनी ओर से भी उन्होंने उसे बहुत कुछ दिया है। वह अमीर भी थे और फकीर भी। एक ओर उनकी पहुँच राज दरबार तक थी, दूसरी ओर वह जनता के बिल्कुल निकट थे। इसीलिए फारसी के अतिरिक्त उन्होंने जनसभा में भी बहुत सी कविताएं, दोहे, पहेलियां और मुकरियां लिखी हैं। इसमें संदेह नहीं कि उनमें से सभी चीज़ें उनकी नहीं हैं, पर जो कुछ उनका माना जाता है उसका अध्ययन किया जाए तो ज्ञान होगा कि उन्होंने खड़ी बोली ब्रजभाषा, मिलीजुली खड़ी और ब्रज का प्रयोग किया है। गीतों में यह अधिकतर ब्रज ही से काम लेते थे। उनके नाम से एक कविता खालिक बारी भी मिलती है, जिसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है कि वह अमीर खुसरो लिखित है भी या नहीं। परंतु ठीक यह मालूम होता है कि जो खालिक बारी हमको आज मिलती है उसमें बहुत कुछ बाद में दूसरों ने जोड़ दिया है और जो कुछ खुसरो ने लिखा था वह उसी में खो गया है। खालिक बारी में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों के हिंदी पर्यायवाची शब्द कविता के रूप में लिखे गए हैं। मध्य एशिया में चंगेज खां और तातरी लुटेरों के आक्रमण से डरकर बहुत से ईरानी विद्वान और व्यापारी भारत में प्रवेश कर आए थे। उनको यहाँ पृष्ठ संख्या 13 के शब्द और बोलचाल के वाक्य जानने की आवश्यकता रही होगी। और यदि अमीर खुसरो ने उनके लिए एक ऐसा शब्दकोश तैयार कर दिया तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम पूरे विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि खालिक बारी का कोई अंश भी अमीर खुसरो की रचना नहीं है। खुसरो की कविताओं के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, यद्यपि कुछ विद्वान इन्हें भी खुसरो की रचना मानने में संकोच करते हैं। गोरी सोवे सेज पर और मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई सब देश। जब यार देखा नैन भर दिल की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर, तू तो हमारा यार है, तुझ पर हमारा प्यार है, तुझ दोस्ती बिसियार है, एक शब मिलो तुम आए कर, खुसरो कहे बातें गजब, दिल में न लावे कुछ अजब, कुदरत खुदा की है अजब, जब जीवा दिया गिल लाए कर। जे हाले मिसकी मकुन तगा फुल, दुराए नैना बनाए वतियाँ, की तावे हिजरा न दारम ए जा, ना लिन्हो काहे लगाए छतियाँ, शबान हिजरा दराज ऊँचो, जुल्फे रोजे वसलच उम्र कोताहा। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। चू सम्मा सो जा चू जर्रा हैरा, जे मेरे आप माह बख्श मत आखिर। ना नींद नैना ना अंग चैना, ना आप आवें ना भेजें पतिया। अमीर खुसरो की पहेलियाँ भी भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा महत्व रखती हैं। ये पहेलियाँ देखिए। बाला था जब मन को भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया। खुसरो कह दिया उसका नाव, बूझे नहीं तो छोड़े गाँव। दीप एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा। चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे आकाश। पृष्ठ संख्या 14। यह बात हम विश्वास से ना कह सकें कि हिंदी में अमीर खुसरो की कितनी रचनाएं हैं, पर इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं कि उन्होंने दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली बोली का प्रयोग अपनी कविताओं में किया। वह एक फारसी शेर में लिखते हैं, चू मन तूत ये हिंदम अर रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरस ता नग्ज गोयम। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वाक्य में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिसमें कि मैं तुमको अनुपम बातें बता सकूं। अमीर खुसरो ने जिस भाषा को हिंदुई कहा है, सच यह है कि हम उसी से हिंदी भाषा का इतिहास भी आरंभ कर सकते हैं। ऊपर इस बात की ओर संकेत किया जा चुका है कि भाषा सामाजिक जीवन के आधार पर बनती है, उसका कोई धर्म नहीं होता। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो शब्दों का लेन देन आवश्यक होता है। जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने फारसी अरबी शब्दों का प्रयोग किया था, उसी प्रकार फारसी कवियों ने भी यहाँ के शब्द लिए। चंद्रवरदाई ने जो शब्द लिए, अगर उन पर विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि अधिकतर वही शब्द हैं जिनका कुछ सामाजिक महत्व था और जिनको संपर्क के कारण साधारण लोग भी समझने लगे थे। अमीर खुसरो का युग खिलजियों और तुगलकों का युग था। फिरोज शाह तुगलक के समय में जो ऐतिहासिक ग्रंथ फारसी में लिखे गए, उनमें न जाने कितने शब्द भारतीय भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे ठग, लौंडी, मंडल, ढोलक, मंडी, चौधरी, राज, घड़ियाल, चूना इत्यादि। इन बातों के अतिरिक्त समकालीन इतिहासों से यह भी मालूम होता है कि पाठशालाओं में जो फारसी पुस्तकें पढ़ाई जाती थी, उनका अर्थ भारतीय भाषाओं में समझाया जाता था। इससे भी पता चलता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के मेलजोल से भारतवर्ष की नवीन आर्य भाषाएं प्रभावित हो रही थी, और जिस प्रकार राजस्थानी, बुंदेली, ब्रज, अवधी इत्यादि का विकास हो रहा था, उसी प्रकार उर्दू भी अपनी जड़ें भारतवर्ष की भूमि और समाज में फैला रही थी। उत्तरी भारत में यह भाषा बन तो रही थी, परंतु साहित्य में उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा था। इसके विपरीत दक्षिण भारत में उसे साहित्य के काम में भी लाया जा रहा था। इसका विस्तृत उल्लेख दूसरे अध्याय में किया जाएगा। यदि हम इस भाषा के इस तेजी से बढ़ने पर विचार करें तो उसका एक बड़ा और स्पष्ट कारण यह प्रतीत होता है कि दिल्ली की फौजों में हर स्थान के लोग होते थे। उनमें हिंदू भी होते थे और मुसलमान भी। वे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। उनमें से अधिकतर राजभाषा से जो फारसी थी अनभिज्ञ थे, और संस्कृत से जो यहाँ के अधिकतर लोगों की धर्म भाषा थी अपरिचित थे। इसलिए उनके आपसी व्यवहार का माध्यम बोलचाल की कोई ऐसी ही भाषा हो सकती थी। पृष्ठ संख्या 15, जिसमें आवश्यकता के अनुसार फारसी अरबी और संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी होता हो, किंतु जिसका मूल आधार केंद्रीय क्षेत्रों की बोलचाल की भाषा हो। दिल्ली के राजधानी होने के कारण खड़ी बोली के सिवा और कोई नहीं हो सकती थी। उस पर पंजाबी, हरियाणी और ब्रज का प्रभाव पड़ना भी अनिवार्य था। और जब हम आगे बढ़कर दक्षिणी उर्दू का अध्ययन करेंगे तो उन प्रभावों की खोज लगाने का अवसर भी मिलेगा। उर्दू के बनने और फैलने का दूसरा बड़ा कारण यह था कि मुसलमान बादशाहों ने यहाँ के प्राचीन ग्रामीण जीवन और भूमि कर के नियमों को साधारणतः वैसा ही रहने दिया। कुछ नए कर तो अवश्य बढ़ा दिए, लेकिन जनसमूह की आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि शासन प्रबंध चलाने और कर वसूल करने के लिए उन्हें गांव के मुखिया और स्थानीय कर्मचारियों पर निर्भर होना पड़ा। ये लोग राजदरबार की फारसी भाषा और जनता के स्थानीय भाषाओं के बीच में एक कड़ी का काम करते थे, और अगर एक ओर वह कभी कभी फारसी पारिभाषिक शब्दों से काम लेते थे तो दूसरी ओर स्थानीय शब्दों का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करते थे। इस प्रकार वह सामग्रियां एकत्रित हो गईं जो एक नई भाषा में शक्ति पैदा करती हैं और उसके क्षेत्र को विस्तृत करके उसका स्वभाव इस प्रकार का बनाती हैं कि वह अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर अपना काम चलाए। इससे पहले कि हम उर्दू साहित्य की खोज में दक्षिण और गुजरात की ओर जाएं, भारत की नवीन आर्य भाषाओं पर एक दृष्टि डाल लेना लाभदायक होगा। उर्दू के क्षेत्र से निकट पंजाबी थी, जिसमें बहुत से दिनों तक थोड़ी सी कहावतों और दोहों को छोड़ किसी प्रकार के साहित्य का पता नहीं चलता। यही हाल हरियाणी का भी था। राजस्थानी बोलियों में अवश्य राजपूत राजाओं के दरबार में काफ़ी साहित्य इकट्ठा हो गया था, परंतु दूसरी भाषाओं की उन्नति के सामने वह दब सा गया। ब्रज भाषा ने 16वीं-17वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण उन्नति की और उसकी चलाई हुई परंपराओं ने 20वीं शताब्दी के आरंभ तक कवियों को प्रभावित किया। बुंदेली में कुछ प्रबंध काव्य मिलते हैं जिनके समय के बारे में मतभेद है। अवधि ने ब्रज भाषा ही के समान 16वीं-17वीं शताब्दी में असाधारण प्रगति की। बंगाली और उड़िया में भी उसी समय से साहित्य मिलने लगता है। मराठी में 13वीं और 14वीं शताब्दी में भक्तों ने काव्य का एक प्रभावशाली भंडार एकत्र कर दिया। इस प्रकार यह बात निश्चित हो जाती है कि जिन आधुनिक आर्य भाषाओं का उद्भव 11वीं शताब्दी में हुआ था, उनमें साहित्य उस समय पैदा होना आरंभ हुआ जब मुसलमान यहाँ कई सौ वर्ष तक रह चुके थे। इनमें से कई भाषाओं में उनकी रचनाएं भी मिलती हैं, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि फारसी के अतिरिक्त वह स्थानीय भाषाओं में भी लिखते थे। और यद्यपि पृष्ठ संख्या 16, वह धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से फारसी और अरबी जानने की चेष्टा भी करते थे, पर यह बात सबके लिए संभव न थी। इस अध्ययन से मुख्य परिणाम निकलता है कि जो नवीन भाषा उर्दू के रूप में निर्मित हो रही थी, वह उस समय तक लोगों को अपनी ओर खींच सकी जब तक वह उत्तरी भारत में फारसी के गहरे प्रभाव के नीचे दबी रही और उसका अपना व्यक्तित्व उभर कर सामने नहीं आया। दक्षिण की बात अलग थी और अब हम उर्दू साहित्य के विकास का अध्ययन उसी क्षेत्र में करेंगे।